एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथसार में आप सबका स्वागत है। आज हम एक समकालीन अमेरिकी लेखक हैं, एरिक पश्नर, उनके उपन्यास ड्रीम स्टेट पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं।
हाँ, एरिक पश्नर, इनका नाम सुना है, काफी जाने जाते हैं अपने बारीक नजरिए के लिए, है ना?
बिल्कुल, वो जिस तरह से आज के मध्यवर्गीय जीवन के, आप कह सकती हैं, खोखलेपन और पारिवारिक रिश्तों की जो उलझने हैं उन्हें पकड़ते हैं, वो कमाल है।
आयोवा राइटर्स वर्कशॉप से है शायद, मैंने पढ़ा था कहीं।
हाँ, वही से, और कई सम्मान भी मिले हैं। उनका पहला उपन्यास था मॉडल होम, वो तो पेन फॉल्कनर अवार्ड के फाइनलिस्ट तक गया था।
अच्छा, तो मतलब स्थापित लेखक हैं।
हाँ, उनकी लिखाई में आपको एकदम शार्प गद्दे मिलेगा, थोड़ा डार्क ह्यूमर भी, और इंसानी रिश्तों पर एक हमदर्दी तो है, पर नजर एकदम तीखी बिना लाग लपेट के।
और वो अक्सर दिखाते हैं कि कैसे ये जो उपनगरों की आरामदायक दिखने वाली जिंदगी होती है ना, उसके पीछे कितनी चिंताएं, कितने तनाव छुपे होते हैं।
सही कहा। लेकिन आज जिस किताब की हम बात कर रहे हैं, ड्रीम स्टेट, उसके साथ एक बड़ी ही दिलचस्प, बल्कि कहूं तो थोड़ी अजीब सी बात सामने आई है।
अजीब सी बात? कैसे?
देखिए, हमारे पास जो जानकारी आई है ना, उसमें इस एक ही नाम की किताब की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां बताई गई हैं।
क्या, दो अलग कहानियां एक ही नाम से? ये कैसे? ये तो सचमुच अजीब है।
है ना, मुझे भी यही लगा। एक कहानी जो शायद 2010 के आसपास छपी होगी, वो लगती है जैसे आर्थिक मंदी के दौर में एक परिवार है, जिलर परिवार, उसके बिखरने और फिर शायद किसी तरह जुड़ने की कहानी।
अच्छा, पारिवारिक ड्रामा टाइप।
हाँ, कुछ वैसा। और दूसरी कहानी जिसका जिक्र 2024 के प्रकाशन के तौर पे मिला है, वो एकदम अलग, एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। उसमें पीढ़ी वर पीढ़ी चले आ रहे सदमे और एक खतरनाक पंथ, मतलब कल्ट, उसका साया है। किरदार भी बिल्कुल अलग हैं, ल्यूक, जूलिया, उसका पिता जॉर्ज।
अरे बाप रे, एक फैमिली ड्रामा और एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर एक ही टाइटल से, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो आज हम क्या करने वाले?
दोनों पे बात करेंगे।
बिल्कुल, यही सोचा है। हमारा मकसद यही है कि इन दोनों वर्णित संस्करणों के जो मुख्य तत्व हैं, उनकी कहानी, उनके किरदार, उनके विषय, उनको आपके सामने रखें जैसा हमें स्रोतों से पता चला है।
देखते हैं कि इनमें क्या समानताएं हैं, क्या विरोधाभास है।
ठीक है, ये तो वाकई काफी अनोखा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं।
हाँ,
पहले कौन सी कहानी? वो आर्थिक संकट वाली?
हाँ, उसी से शुरू करते हैं, जिलर परिवार की कहानी।
बताइए इसके बारे में। ठीक है, तो ये कहानी हमें ले जाती है कैलिफोर्निया के एक उपनगरीय इलाके में। जिलर परिवार है, पिता वॉरेन, माँ कैमली और दो बेटे हैं डस्टिन और लाइल। बाहर से देखने पर सब एकदम परफेक्ट लगता है, अच्छा खासा घर, गाड़ी, मतलब एक औसत अमेरिकी मध्यम वर्गीय जीवन जैसा होता है। लेकिन घर के अंदर ना एक अनदेखा सा तनाव है। खासकर पिता वॉरेन, जो एक कंपनी में ठीक ठाक पद पर हैं, वो अपनी नौकरी को लेके बहुत परेशान है अंदर ही अंदर।
और ये परेशानी सिर्फ एहसास नहीं है ना, कुछ होता भी है फिर।
हाँ बिल्कुल, वही होता है जिसका उसे डर था। वॉरेन की नौकरी चली जाती है और यहाँ कहानी एक मोड़ लेती है। वो शायद शर्मिंदगी के मारे या अपनी वो प्रोवाइडर वाली पहचान खोने के डर से, वो ये बात घर में किसी को बताता ही नहीं।
छुपा लेता है।
हाँ, रोज सुबह तैयार होके निकलता है जैसे काम पर जा रहा हो, पर असल में वो या तो कैफे में बैठा होता है या लाइब्रेरी में नई नौकरी ढूंढता है या शायद बस वक्त काट रहा होता है।
ये तो बहुत ही मुश्किल स्थिति है, रोज एक झूठ को जीना, वो भी तब जब परिवार चलाना हो। तो परिवार पर इसका असर कैसे पड़ता है फिर?
असर तो पड़ता ही है, धीरे धीरे पैसों की तंगी सामने आने लगती है। अब कैमिली, मतलब वॉरेन की पत्नी, जिसे कभी अपने कुछ सपने थे, अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं जो उसने शायद पति और बच्चों के लिए पीछे छोड़ दी थीं, उसे अब मैदान में उतरना पड़ता है। वो एक रिटेल स्टोर में नौकरी शुरू करती है। शुरू में तो उसे लगता है कि ये काम उसकी काबिलियत के हिसाब से कम है, लेकिन दिलचस्प बात ये होती है कि उसे वहाँ काम करके ना एक अजीब सी आज़ादी मिलती है, एक संतुष्टि महसूस होती है, शायद वो जो उसे घर की चार दीवारी में कभी नहीं मिली थी।
ये वाकई दिलचस्प है, मतलब एक का नुकसान दूसरे के लिए अनजाने में ही सही एक तरह की नई खुड़की खोल देता है। बच्चों का क्या होता है इस दौरान, उन पे क्या असर होता है?
बच्चे भी कहाँ अछूते रहते हैं ऐसे माहौल से। जो बड़ा बेटा है डस्टिन, वो अचानक बहुत बिगड़ेल सा, गुस्सेल सा हो जाता है। पता नहीं शायद घर के तनाव का असर था या उसकी अपनी उम्र की उलझने। और छोटा बेटा लायल, वो तो जैसे घर की सच्चाई से भागने के लिए वीडियो गेम्स की दुनिया में ही खो जाता है।
एक तरह से हर कोई अपनी अपनी तरह से डील कर रहा है ना, लेकिन आपस में बात नहीं हो रही शायद।
बिल्कुल नहीं, एकदम चुप्पी है, हर कोई अपने खोल में बंद है।
यहीं पर शायद वो अमेरिकन ड्रीम वाली बात आती है जिसका जिक्र पर्चनर की लेखनी में अक्सर मिलता है। वो सपना जो कहता है कि बस मेहनत करो, एक अच्छा सा घर ले लो, गाड़ी ले लो और सब ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ वो सपना एकदम दरकता हुआ दिख रहा है। घर तो है पर नौकरी नहीं, परिवार है पर आपस में कोई संवाद ही नहीं।
बिल्कुल सही कहा। और ये चुप्पी तब टूटती है जब हालात बिल्कुल सिर पर आ पड़ते हैं। घर पर बैंक का नोटिस आ जाता है फोरक्लोजर का, मतलब घर नीलाम होने वाला है। अब तो सच्चाई छुपाना नामुमकिन था।
ओहो।
और मानो इतना काफी ना हो, लगभग उसी समय जो बड़ा बेटा है डस्टिन, उसे पुलिस पकड़ लेती है किसी तोड़फोड़ के मामले में।
यानी दोहरा झटका, एक तरफ घर जाने का खतरा, दूसरी तरफ बेटे का मुसीबत में पड़ना। इसने तो परिवार को बुरी तरह झकझोर दिया होगा।
हाँ, बुरी तरह से। अब उनके पास एक दूसरे से मुंह मोड़ने का या सच्चाई से भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। उन्हें आखिरकार बैठकर बात करनी पड़ी, अपने डर, अपनी गलतियां सब सामने रखना पड़ा।
तो अंत में क्या होता है, कोई चमत्कार?
नहीं, कोई चमत्कार नहीं होता। उन्हें कोई लॉटरी नहीं लगती, ना ही वॉरेन को अचानक कोई बहुत बड़ी नौकरी मिल जाती है। वो अपनी बदली हुई, घटी हुई सच्चाई को स्वीकार करते हैं। उन्हें अपना वो प्यारा घर खोना पड़ता है, लेकिन इस पूरी तबाही के बीच वो एक दूसरे को शायद ज्यादा सच्चाई से, ज्यादा ईमानदारी से देखना शुरू करते हैं। उनका ध्यान चीजों से हटकर रिश्तों पर आ जाता है।
तो ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे कभी कभी सब कुछ खोकर ही हम शायद असली चीजों को पाते हैं। यहाँ जो मुख्य विषय उभरते हैं वो यही हैं, वो अमेरिकी सपने का खोखलापन है ना, परिवार के अंदर की वो अनकही बातें जो संकट में या तो रिश्ते तोड़ देती हैं या फिर उन्हें एक नई, शायद ज्यादा मजबूत बुनियाद पर जोड़ देती हैं।
हाँ, और वॉरेन के जरिए वो पुरुष पहचान का संकट भी दिखता है। जब वो कमाने वाले की भूमिका छिन जाती है तो इंसान खुद को कैसे देखता है, उसका आत्मसम्मान कैसे प्रभावित होता है।
बिल्कुल। और कैमिली का किरदार भी कितना महत्वपूर्ण है। वो दिखाता है कि कैसे कभी कभी जो काम हमें छोटा लगता है या जैसे समाज कम आंकता है, वही हमें अपनी पहचान का, अपनी ताकत का एक नया पहलू दिखा सकता है।
सही। इस कहानी को कहने के लिए स्रोत बताते हैं कि लेखक ने एक ऐसा नजरिया अपनाया है जहां वो सभी किरदारों के मन की बात जानते हैं। मतलब वो वॉरेन की चिंता भी समझते हैं, कैमिली की नई मिली आजादी भी और बच्चों की उलझन भी।
हाँ, जिसे तकनीकी भाषा में शायद थर्ड पर्सन ओमिनिशेंट नरेटर कहते हैं। इससे हमें हर किसी की स्थिति की एक पूरी तस्वीर मिलती है
जी।
और घर का प्रतीकात्मक भी है इसमें, है ना। पहले वो सफलता का प्रतीक था, फिर बोझ बन गया।
बिल्कुल। और लेखक ने बड़ी चलाकी से स्थितियों की विडंबना को भी उभारा है, जैसे वॉरेन की वो बड़ी कॉरपोरेट नौकरी का खालीपन और कैमिली की छोटी रिटेल नौकरी में मिली असली संतुष्टि। लिखने का अंदाज भी काफी सधा हुआ, बिना ज्यादा भावुकता के चीजों को वैसे ही दिखाता है जैसी वो है।
हाँ, स्रोतों में कुछ पंक्तियों का सार भी दिया, जैसे वॉरेन का सोचना कि वो सीढ़ी चढ़ने में इतने साल बिता चुका था कि ये देखना भूल गया कि वो कहाँ ले जा रही है। ये कितनी गहरी बात है, लक्ष्यहीन सफलता की दौड़।
और घर के बारे में महसूस करना कि घर एक खूबसूरत औरत जैसा था जिसकी शादी किसी और से हो चुकी हो, आप उसे देख तो सकते थे पर कभी अपना नहीं कह सकते थे। मतलब वो अपनापन, वो सुरक्षा का भाव खो चुका था।
और कैमिली का वो एहसास कि सालों से वो अपने ही जीवन में एक सहायक किरदार थी,
ये आत्मबोध का क्षण है।
हाँ, ये पंक्तियां किरदारों की अंदरूनी कश्मकश को बहुत अच्छे से सामने लाती हैं।
सही कहा। तो कुल मिलाकर ये पहला संस्करण एक आर्थिक और भावनात्मक टूटन के बाद रिश्तों की ईमानदारी की तलाश की एक काफी संजीदा और मार्मिक कहानी पेश करता है। पर अब जरा उस दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं जो इसी ड्रीम स्टेट नाम से जुड़ी है पर जिसका माहौल बिल्कुल अलग बताया गया है, एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर।
हाँ, ये वाली कहानी, इसका सेटअप ही एकदम अलग है। ये भी दक्षिणी कैलिफोर्निया में ही है, पर यहां मिलते हैं ल्यूक से। ल्यूक एक थेरेपिस्ट है, बहुत सुलझा हुआ, तर्क से चलने वाला इंसान लगता है।
अच्छा, एक थेरेपिस्ट नायक, दिलचस्प। हाँ, और उसकी पत्नी है जूलिया। जूलिया एक कलाकार है और उसके अतीत का एक हिस्सा एक कल्ट यानी पंथ से जुड़ा है जो काफी दर्दनाक रहा है। उनके दो बच्चे हैं विल और आइरिस। इनका भी जीवन बाहर से एकदम परफेक्ट दिखता है, खूबसूरत घर, कामयाब पति पत्नी, प्यारे बच्चे, एकदम सपने जैसा।
फिर से वो सपने जैसा जीवन, और जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, इस सपने जैसी शांति में कोई खलल डालने आता है।
बिल्कुल, और खलल डालने आता है जूलिया का पिता जॉर्ज। वो अचानक जेल से छूटकर उनके दरवाजे पर आ खड़ा होता है, और जॉर्ज कोई आम पिता नहीं है, वो बहुत बहुत करिश्माई है, बातों में माहिर, लेकिन उतना ही खतरनाक और जोड़ तोड़ करने वाला। वो आश्रम नाम के एक बदनाम आध्यात्मिक पंथ का मुखिया रह चुका है, वही पंथ जहां जूलिया का बचपन बहुत तकलीफ में बीता था।
और जॉर्ज दावा करता है कि वो बदल गया है, सुधर गया है।
अरे बाप रे, ये तो कहानी की शुरुआत ही बेहद तनाव भरी है। एक ऐसा अतीत जिसे जूलिया शायद भूलना चाहती हो, वो सचमुच दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और जॉर्ज सिर्फ दस्तक नहीं देता, वो घर के अंदर अपनी जगह बनाने लगता है। बड़ी चालाकी से वो बच्चों को अपनी बातों और कहानियों से एकदम मोह लेता है। वो धीरे धीरे लूक की बातों को घर में उसके अधिकार को कमजोर करना शुरू कर देता है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि वो जूलिया के पुराने जख्मों को कुरेदता है, लेकिन एक नए खतरनाक अंदाज में। वो जूलिया के बचपन की दर्दनाक यादों को ऐसे पेश करता है जैसे वो कोई महान आध्यात्मिक अनुभव थे।
ये तो बहुत ही खतरनाक खेल है, इसे शायद गैसलाइटिंग कहते हैं ना, मतलब सामने वाले को उसकी अपनी यादों, अपनी सच्चाई पर ही शक करवा देना।
हाँ बिल्कुल वैसा ही। जॉर्ज धीरे धीरे जूलिया को पूरी तरह अपने प्रभाव में ले लेता है। अब लूक, जो खुद एक थेरेपिस्ट है, वो जॉर्ज की असलियत को देख पा रहा है। वो समझ जाता है कि जॉर्ज एक नार्सिसिस्ट है, मतलब ऐसा इंसान जो सिर्फ खुद से मतलब रखता है और दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। ल्यूक जूलिया को समझाने की, जॉर्ज का पर्दाफाश करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जूलिया मानने को तैयार ही नहीं। वो जॉर्ज की बातों में इतनी उलझ जाती है कि उसे ल्यूक ही गलत लगने लगता है। उसे लगता है ल्यूक शायद जलन के मारे या बेवजह शक की वजह से ऐसा कह रहा है।
ये तो ल्यूक के लिए बहुत ही भयानक स्थिति होगी। वो साफ साफ खतरे को देख पा रहा है, पर अपनी पत्नी को ही यकीन नहीं दिला पा रहा। एक तरह से अपने ही घर में अकेला पड़ गया होगा वो।
बिल्कुल, घर का माहौल एकदम घुटन भरा तनावपूर्ण हो जाता है। ल्यूक का शक और अकेलापन बढ़ता जाता है। कहानी का तनाव धीरे 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 चरम पर पहुंचता है। और फिर कुछ ऐसा होता है, शायद बच्चों से जुड़ा कोई बड़ा खतरा सामने आता है, कि जॉर्ज का नकाब पूरी तरह उतर जाता है। उसका असली ठंडा और मतलबी चेहरा सबके सामने आ जाता है।
और तब जूलिया के सामने वो मुश्किल चुनाव आता होगा, पिता के बनाए उस भ्रम जाल और अपने टूटते परिवार की कड़वी सच्चाई के बीच।
हाँ, और ये टकराव बहुत बहुत क्रूर होता है। आखिरकार जॉर्ज को घर से निकाल दिया जाता है, लेकिन वो अपने पीछे भावनात्मक तबाही के निशान छोड़ जाता है। परिवार बच तो जाता है, पर वो पहले जैसा कभी नहीं रह पाता। खासतौर पर लूक और जूलिया के बीच का जो भरोसा है, वो टूट चुका होता है। उसे शायद फिर से बनाने में बहुत वक्त लगेगा, या शायद वो कभी पूरी तरह बन भी ना पाए। कहानी का अंत कोई साफ सुथरा या सुखद नहीं है, बल्कि काफी बेचैन करने वाला है। ये दिखाता है कि ऐसे अनुभव कितने गहरे घाव छोड़ जाते हैं।
उफ, ये कहानी तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली लगती है। पहली वाली से बिल्कुल अलग मूड है इसका। इसमें भी कई गहरे मुद्दे छुपे हुए हैं, है ना? सबसे बड़ा तो शायद वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला सदमा है, जनरेशनल ट्रॉमा जिसे कहते हैं।
हाँ बिल्कुल, कैसे अतीत का साया, बचपन के वो घाव, अगर अनसुलझे रह जाएं तो वो वर्तमान को, अगली पीढ़ी को भी अपनी चपेट में ले लेते हैं।
और वो परफेक्ट दिखने वाले परिवार का खोखलापन यहाँ भी है। जैसे पहली कहानी में आर्थिक दबाव ने दरारें दिखाई थीं, यहाँ एक बाहरी खतरनाक इंसान के आने से अंदर की कमजोरियां, अंदर के अनसुलझे मुद्दे उजागर हो गए।
सही कहा। और यहाँ हेरफेर यानी मैन्युपुलेशन और भरोसे का मुद्दा बहुत अहम है। जॉर्ज का किरदार दिखाता है कि कैसे कुछ लोग अपने आकर्षण और बातों के जाल से दूसरों को फंसाते हैं, उनकी सच्चाई को, उनकी यादों तक को तोड़ मरोड़ देते हैं।
हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस पर और क्यों भरोसा करते हैं। और फिर स्मृति और सच का सवाल, जूलिया कैसे अपनी यादों से जूझती है, कैसे वो सच और झूठ के बीच फंसी है, ये दिखाता है कि हमारी यादें कितनी अविश्वसनीय हो सकती हैं, खासकर जब कोई उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करे।
और आपने कैलिफोर्निया की ड्रीम स्टेट वाली सेटिंग का जिक्र किया था, क्या वो भी यहाँ कुछ मायने रखती है?
हाँ, श्रोत बताते हैं कि यहाँ सेटिंग सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक प्रतीक की तरह इस्तेमाल हुई है। कैलिफोर्निया का वो सपना, वो धूप, वो सुंदरता, जिसके नीचे जमीन उतनी मजबूत नहीं है, वहाँ भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। ये बिल्कुल उन किरदारों जैसा है जिनका बाहरी जीवन चमकदार है पर अंदर से टूटने की कगार पर है।
अच्छा,
कहानी कहने का अंदाज भी यहाँ अलग है। ज्यादातर कहानी हमें लूक के नजरिए से पता चलती है। इसे शायद क्लोज थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव कहते हैं। इससे हमें उसकी बढ़ती बेचैनी, उसकी घुटन ज्यादा महसूस होती है। माहौल में लगातार एक डर और अनहोनी का एहसास बना रहता है।
और घर, पहली कहानी में घर प्रतीक था सफलता का, फिर बोझ का, यहां
घर सुरक्षा की जगह एक पिंजरा बन जाता है। और शीर्षक ड्रीम स्टेट के यहाँ कई मतलब निकलते हैं। कैलिफोर्निया राज्य का निकनेम, सपने जैसी अवस्था या फिर भ्रम की स्थिति जिसमें किरदार जी रहे हैं।
इसमें कुछ खास पल या संवाद जो इस माहौल को पकड़ते हों, उनका जिक्र है।
हाँ, जैसे ल्यूक का ये सोचना कि उसका सारा पेशेवर ज्ञान, उसकी थेरेपी की समझ घर के अंदर फैले इस अंधेरे के सामने एकदम बेकार साबित हो रही है। या जूलिया का अपने पिता की गढ़ी हुई कहानी पर यकीन करने का वो लालच, भले ही वो कहानी उसके अपने दर्द को छुटला रही हो। और एक बहुत ही डरावनी बात, जॉर्ज का बच्चों को ये सिखाना कि राज रखना भी प्यार जताने का एक खास तरीका है। ये सीधे सीधे कल्ट बनाने वालों की सोच है, दूसरों को कंट्रोल करने का तरीका।
ये सुनकर ही सिहरन होती है। इस कहानी का असर बिल्कुल अलग है, गहरा तनाव, घुटन और अपनों के बीच छिपे खतरे का डर।
बिल्कुल। तो अब हमारे सामने ये पहेली है, एक लेखक एरिक पेचनर, एक शीर्षक ड्रीम स्टेट, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। एक आर्थिक तंगी और रिश्तों की बहाली पर आधारित पारिवारिक ड्रामा, दूसरी मनोवैज्ञानिक डर, कल्ट और अतीत के सायों पर आधारित थ्रिलर। ये कैसे हो सकता है? क्या ये वाकई दो अलग किताबें हैं, या हमारे स्रोतों में कोई गलतफहमी है, या फिर लेखक ने जानबूझकर कुछ ऐसा किया है?
ये सोचना वाकई दिलचस्प है। क्या ऐसा हो सकता है कि लेखक ने एक ही विषय जैसे परिवार की नाजुकता या भ्रम बनाम सच्चाई को दो बिल्कुल अलग कहानियों के जरिए एक्सप्लोर किया हो एक ही शीर्षक के तहत?
हो सकता है। और अगर हम दोनों कहानियों के सार को देखें तो कुछ धागे जुड़ते हुए भी लगते हैं, है ना? जैसे दोनों में पिंचनर की वो पैनी नजर दिखती है जो अमेरिकी जीवन के, खासकर उपनगरीय जीवन के, दिखावे के पीछे छिपी बेचैनी और अंधेरे को पकड़ती है।
हाँ, ये बात तो है। दोनों कहानियों में परिवार की नाजुकता का थीम है, भ्रम बनाम सच्चाई का संघर्ष भी है, किरदारों का अंदरूनी द्वंद्व है। शायद कहानी का प्लॉट अलग है, पर लेखक का जो मूल कंसर्न है वो इंसानी रिश्तों की जटिलताओं और अमेरिकी समाज की सच्चाइयों पर ही है।
सही कहा। और शायद ये शीर्षक ड्रीम स्टेट ही इन दोनों को किसी स्तर पर जोड़ता है। पहली कहानी में ये अमेरिकन ड्रीम है जो टूटता है, वो आर्थिक सपना। दूसरी कहानी में ये एक मनोवैज्ञानिक ड्रीम स्टेट है, एक भ्रम की अवस्था है जिसमें जूलिया फंसी है, और शायद कैलिफोर्निया की वो सपने जैसी सेटिंग भी।
ये एक संभावना है। हो सकता है लेखक यही दिखाना चाहते हों कि हम सब किसी ना किसी ड्रीम स्टेट में जी रहे हैं, चाहे वो आर्थिक सफलता का सपना हो, या रिश्तों की परफेक्ट तस्वीर का भ्रम हो, या अतीत से भागने की कोशिश हो।
और ये दोनों कहानियां अपने अपने बिल्कुल अलग तरीकों से हमें उन सपनों या भ्रमों से जगाने की, या कम से कम उन पर सवाल उठाने की कोशिश करती हैं।
शायद तो अंत में ये कहानियां, चाहे वो जिलर परिवार की आर्थिक मुश्किलों वाली हो या ल्यूक और जूलिया के मनोवैज्ञानिक डर वाली, हमें यही सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम जिन सच्चाइयों या सपनों के सहारे जी रहे हैं उनकी बुनियाद कितनी मजबूत है,
और क्या उन सपनों के पीछे भागते हुए या किसी भ्रम में जीते हुए हम कुछ ज्यादा जरूरी चीजें जैसे ईमानदारी, आपसी संवाद और असली मानवीय जुड़ाव तो नहीं खो रहे।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।